फेस टू फेस होने से अच्छा होता है मेरे को इधर ही
उसका क्या है वो जिसका सिस्टम है वो नहीं इधर सेटल है
विवेकानंद ने एक जगह कहा है कि भारत की नेशनल लाइफ में संपूर्ण इतिहास में एक भी समय ऐसा नहीं है, एक भी काल ऐसा नहीं है कि जब महान आत्माएं न हो। पूरा इतिहास अगर देखा जाए एक भी ऐसा समय नहीं, सेकंड नहीं, संपूर्ण इतिहास में तो भारत में समय समय पर महान आत्माएं आई है। ऐसा एक भी समय नहीं है कि जब महान आत्मा स्पिरिचुअल जायंट इस संसार भारत में ना हुई हो। संसार में सबसे अधिक पवित्र आत्मा है भारत में, सारी महिमा है पवित्रता की भारत की। जब भारत की ग्लानी होती है, जब भारत की सबसे ज्यादा ग्लानी होती है, खास भारत मंडे की साकारवाणी, जब भारत की खास ग्लानी होती है तब मैं आता हूँ, बाकी इसकी नहीं। भारत की हिंदुस्तान में मैं नहीं आता, बाबा ने कहा मैं भारत में आता हूँ। हिंदुस्तान नाम तो इन्होंने रखा। तो पवित्र आत्माओं की महिमा सबसे ज्यादा है। और बाबा ने यह भी कहा है कि जो भी आत्मा पवित्र रहती है वो जाने अनजाने में बाप को मदद करती है। द्वापर युग से अब तक जो भी पवित्र रहेगी किसी भी रूप से, श्रीमत पर पवित्रता तो अभी है पर इसके पहले भी जो पवित्रता थी वो सब आत्माओं ने भगवान की ही मदद की। तो पवित्र आत्माओं की महिमा तो सर्वश्रेष्ठ है। तो आज की सारी मूर्ति भी पवित्रता पर, संपूर्ण पवित्रता। सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग की सीमा रेखा क्या है? सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग पवित्रता, जो कुछ है सब कुछ पवित्रता ही है, वहाँ है यहाँ नहीं है। सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग की सीमा रेखा बॉर्डर लाइन जो डिमार्केट करती है ये अलग है, दूसरा कुछ नहीं है, बाकी तो सब है ही, जैसा है वैसा है। पवित्रता ही दोनों इसकी सीमा रेखा। तो आज की सारी मुरली पवित्रता पर है। बाप दादा दो बातें देख रहे हैं, एक तो पवित्रता और दूसरी ऑनेस्टी और हाई और ऑनेस्ट होलीएस्ट और ऑनेस्ट। तो सात बातें बताई।
सबसे पहले सच्चाई,
सबसे पहली छठी है
बच्चे जो है जैसा है स्वयं को बाप
कहकर। चलो हम पहले से चालू करते हैं। तो सबसे पहला है कौन सा?
सच्चाई,
ऑनेस्टी, प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई। तो बाबा ने शुरुआत में भी कहा ना यथा योग यथा शक्ति, ये दो बातों को बाप दादा आज देख रहे हैं, एक तो ऑनेस्टी और दूसरा प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचर्य संपूर्ण पवित्रता की स्टेज नहीं है, सर्वोच्च स्टेज ब्रह्मचर्य तो एक भाग है, पवित्रता में बहुत सारी बातें है उसमें का खाली एक ब्रह्मचर्य एक भाग है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण पवित्रता की स्टेज नहीं है, ब्रह्मचर्य काम से रिलेटेड है, पवित्रता विकारों से रिलेटेड। और ब्रह्मचर्य पवित्रता के ऊपर भी एक पावन, पावन उससे भी ऊपर है, पावन तो एकदम देवता है, संपूर्ण निर्विकारी पावन ऑलमोस्ट एक ही है। बाबा ने अभी साकार में भी कहा ना कि पूजन योग्य और गायन योग्य कौन है, तो गायन योग्य ब्राह्मण है, पूजन योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर पवित्र नहीं है, केवल देवता ही है एकमात्र की जो कि गायन पूजन योग्य भी है गायन योग्य भी है दोनों है, पर ब्राह्मण जो है वो पूजन योग्य नहीं है क्योंकि शरीर अपवित्र है, सब विकार से पैदा होते हैं भगवान का। मंडे ट्यूजडे की मुरली है। तो सबसे पहला है सच्ची सच्चाई
रियलिटी
सच्चे दिल वाले जो है वही क्या बाप के दिल तख्त पर है, और जो दिल तख्त पर है वही विश्व राज्य तख्त नशीन है। तो सबसे पहला आधार है सच्चाई, दिल की सफाई सच्चाई। सच्चाई अगर है तो ही बाप को प्रिय है। बाप को प्रिय कौन है? एक मुरली भी चली ना, मुझे अति प्रिय कौन है? हाँ, जो सर्विस जो मेरी सर्विस सबसे ज्यादा करते हैं वो मुझे सबसे अति प्रिय है, जो सुखदायी बनाते हैं दूसरों को वो मुझे अति प्रिय है। गीता में भी है कि जो मेरी मेरा गायन करते हैं, मेरा वर्णन करते हैं, मेरी महिमा करते हैं, मेरे गुणगानों को सारे विश्व में आत्माओं को सुनाते हैं, हे अर्जुन ऐसी आत्माएं मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ऐसे जो भक्त है नमे भक्त्या प्रेष्यति, मेरे भक्तों का ऐसे भक्तों का कभी विनाश नहीं हो सकता, ऐसे भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। वो उसमें भी दिखाया ना रामायण में, जब विभीषण राम की शरण में आता है सब लोग कहते हैं इसको मतलब ये शायद रावण की कोई चाल हो सकती है, ऐसे कहते हैं ना उसको कि इसको इसको शरण में नहीं लो, परंतु राम कहता है कि ये सच्ची दिल से मेरे पास आया है। निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये निर्मल हृदय है इसका, निर्मल मन सो मोहि पावा, जो निर्मल हृदय है जो मेरे पास पहुंचता है। मोहि कपट छल छिद्र, कपट मुझे पसंद नहीं है, छल मुझे पसंद नहीं है, छिद्र अर्थात जो दूसरों के दोष देखता है, छिद्र वो मुझे पसंद नहीं है, इसके लिए मैं इसको शरण दूंगा क्योंकि ये निर्मल हृदय से मेरे पास आया है। तो ऐसी आत्माओं को भगवान शरण देते हैं, प्रेम करते हैं जो सच्चे दिल वाले। तो सबसे पहली डेफिनेशन है ऑनेस्टी की, सच्चाई। केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, केवल ब्रह्मचर्य पूर्णता की स्टेज नहीं है, बाबा ने कहा सच्ची दिल फर्स्ट, सेकंड रामानंद है क्या, बाप से जो खजाने प्राप्त हुए हैं वो बाप के डायरेक्शन के अनुसार जो कार्य में लगाते हैं, जो भी खजाने प्राप्त हुए जो डायरेक्शन अनुसार कार्य में लगाते हैं उन्हीं को ईमानदार कहेंगे। बाबा ने कहा चाहे संकल्प वाणी कर्म श्वास समय, ये जो भी बाबा से प्राप्त हुए हैं उनको श्रीमद अनुसार कार्य में लगाते हैं। मन्मत और परमत के प्रभाव से संग दोष में आने से स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करने वाले, स्वमान में रहने के बजाय अनेक प्रकार के अभिमान में आने वाले, इनको ईमानदार नहीं करेंगे।
बड़ा गहरा मामला,
बहुत गहरा है। स्वचिंतन की बजाय परचिंतन करने वाले, वो बाप ने जो खजाना दिया है उसमें अमानत में ख्याना से रहे, इसको ईमानदार नहीं कहेंगे।
विश्व कल्याण बोला,
बाप का कार्य है, बाप का जो खजाने किस लिए दिए हैं, विश्व कल्याण अर्थ। इस कार्य के अलावा और किसी भी कार्य में अगर लगाते हो खजानों को तो उसको ईमानदार नहीं कहेंगे, वो अमानत में ख्याना।
सबसे बड़ी
प्योरिटी की बहुत ऊंची स्टेज है ये, उसमें तो कितनी सारी बातें आ रही है ना। बाबा कह रहे हैं कि मनमत और परमत प्रमाण, आगे भी आगे बोला ना, अपनी केस को ऐसा पेश करते हैं मनमत और मनमत और सज धज कर बाबा के सामने या निमित्त बनी आत्माओं के सामने पेश करते हैं कि ऐसा लगे कि सच्चे लगे, उनको भोलानाथ समझते और इनका उनको भोले समझते, पर खुद भोले है वो, और वो खुद भोले हैं। तो वो दूसरा पॉइंट है। तो बाबा ने कहा ऐसे जो बच्चे हैं जो खजाने जो बाप से मिले, अभी कौन कौन से खजाने बाबा ने बताए, एक तो उसमें संकल्प बोल और कर्म, वाणी शब्द बोला बाबा, और समय, समय और श्वास वैसे एक ही चीज है। अभी सबसे पहले तो खजाने तो टोटल बहुत सारे, 9 खजाने में बाबा ने तो बताया, संकल्प एक खजाना, मन और संकल्प एक ही हो गया, बोल कर्म और समय, बाबा ने ये कहा, बाकी तो तन मन धन ये सारा
इस रूप से
ज्ञान गुण शक्तियाँ, खजाने नौ है ना, ज्ञान गुण शक्तियाँ, खुशी, पवित्रता, दुआएं, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य, पुण्य और श्रेष्ठ कर्म, वही है संतुष्टता, उस दृष्टि में नहीं आता। वैसे वो भी खजाना तो है, खजाने तो अनंत है, बाबा ने तो अनंत खजाने दिए, उसकी कोई लिस्ट नहीं है, बस हो गया इतने खजाने हैं टोटल। तो बाप के दिए हुए खजाने को डायरेक्शन अनुसार, बाप के डायरेक्शन अनुसार कार्य में लगाना, ये नहीं मान रहे, ऑनेस्टी या फिर प्योरिटी भी कह सकते हैं इसको, ये है सेकंड। थर्ड, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ काम, भावना अर्थात फीलिंग, भाव, भाव और भावना, क्या भाव है कोई जा रहा है उसके प्रति क्या भाव है हमारा, पॉजिटिव है, निगेटिव है, शुभ है, जिसने हमको बहुत दुख दिया है उसके प्रति क्या भाव है, जिसने हमको बहुत सताया है उसके प्रति क्या भाव है, जिसने हमारी ग्लानी की है, अपमान किया है, निंदा की है, सहयोग नहीं दिया, मदद नहीं की, उसके प्रति शुभ भावना, ऐसी आत्माओं के, बाकी तो सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना वो तो नेचुरल है, पर ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ भावना
उनको याद करके सामने लाके गले लगा लेने का
सबको बाबा स्वरूप में देखेंगे ना,
अनादि स्वरूप में सबको
मूल स्वरूप में दिखाई देता है क्या उस समय
भाई भाई उस समय नहीं दिखाई देता
है क्या, जब कोई कुछ
हम बीमार है
देखो अभी तो नहीं रहता था, पहले तो हमारा भी ठक ठक होता था, अभी कुछ नहीं होता,
हम बीमार है
क्योंकि अभ्यास, ये तो अनुभव से ही होता है,
धीरे धीरे क्या
ज्ञान शक्ति बहुत अच्छी में देखा है,
शिथिल हो गए अंग अंग शिथिल हो गए, कर्मेंद्रिया शिथिल हो गई,
नहीं चक्कर होता था हमारा लेकिन अब कभी नहीं हो सकता ऐसा, मना ये परीक्षा तो आएगी लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि सब बाबा के मूल स्वरूप झार देखेंगे ना निरंतर, तो बाबा जैसा गिरने देखते ऊपर का झार बहुत अच्छा है,
शुभ भावना और शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना, कामना अर्थात
इच्छा नहीं
होती है, तब मैं आ
गई इच्छा दूसरों के प्रति क्या इच्छा है,
श्रेष्ठ
शुभ भावना शुभ कामना का, एक तो शुभ भावना अर्थात भाव इमोशन फीलिंग और कामना अर्थात इच्छा, क्या इच्छा है उनके प्रति हमारी, सबका कल्याण, सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब तीव्र पुरुषार्थी बन जाए, सब उमंग उत्साह में आ जाए, सब बहादुर बन जाए, सब निर्विघ्न हो जाए, सबकी समस्याएं हट जाए, दुख दूर हो जाए, सबकी बीमारियां ठीक हो जाए,
सब
कर्मातीत हो जाए, सबके प्रति विश्व के प्रति शुभ भावना तो आदि काल से है, सर्वे भवन्तु सुखिनः ऋषियों ने भी गाया हुआ है, सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो, सब बीमारियों से मुक्त हो जाए,
द्वापर फिर थोड़ा बाद में शुरू हुई होगी, पहले द्वापर में स्टार्टिंग में तो नहीं होगा,
शुरुआत में नहीं, तुरंत तो धीरे धीरे
धीरे धीरे
धीरे धीरे जब उनको लगा कि ये संकल्प करेंगे तो खुद का ही कल्याण हो रहा है, एक्चुअली वो संकल्प हमको ही वापस आ रहे हैं ना प्रकृति से,
और शास्त्र भी थोड़ा बाद में बने,
बाद में बने, स्टार्ट में जरूरी थी क्यों बनेंगे, धीरे धीरे जब दुख आने लगा आत्मा में तब बने सारे। तो ये था शुभ भावना शुभ कामना, तीसरा, चौथा सदा हर कदम में मनसा वाचा, हर कदम में मनसा वाचा कर्मना, संकल्प बोल और कर्म तीनों में निमित्त और निर्माण भाव, मैंने किया ये नहीं, जहाँ पर मैं है वहाँ पर मैं नहीं, अव्यक्त महावाक्य, जहाँ मैं है वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं है वहाँ मैं निवास नहीं करता हूँ। राम जब उतर आते हैं वनवास में अत्रि ऋषि के आश्रम में, तो राम उसको पूछता है कि हे ऋषिवर मैं कहाँ रुकूं, कहाँ मैं निवास करूँ। मतलब उसको घर चाहिए रहता है कोई जगह, वो बाद में पंचवटी बताता है, पर प्रश्न ये पूछता है कि मैं कहाँ रुकूं। तो पूछता है जाओ राम उस हृदय में रुको जो पवित्र है, उस हृदय में जाकर तुम निवास करो निरंतर। तो जहाँ मैं है वहाँ पर मैं नहीं, जहाँ निमित्त भाव है। सफलता का आधार लास्ट संडे का वरदान था ना, तो निमित्त भाव समृता और निमित्त दो बातें, ये दो है तो ही सफलता मिलेगी। चाहे कितनी भी भाग दौड़ करो सेवा करो, पर यदि निमित्त भाव निर्मल भाव और निर्मल वाणी नहीं है तो 5% जमा होगा। बस चाहे कोई समझ रहा है मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, परंतु यदि निमित्त भाव नहीं है, वहाँ है कि मैंने किया उसका वर्णन कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये भाव स्वयं को प्रत्यक्ष करने की इच्छा वहां पर बाप नहीं। यहां मैं आया, मैं और बाप दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अहंकार है वो, अहंकार की खेती है वहां पर सुख शांति। हाँ वो भी था। तो निमित्त और निर्माण ये था पांचवा। उसके बाद छठवा, हर कदम में समर्थ समर्थ स्थिति का अनुभव, हर कदम में समर्थ स्वरूप की स्थिति, और आगे हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग का हाथ का अनुभव, का अनुभव, का अनुभव, समर्थ स्थिति, हर संकल्प में समर्थ स्थिति का अनुभव, और बाप के साथ और हाथ हर कर्म में उसका अनुभव, ये भी पवित्रता है। मतलब कितनी ऊंची बात है, स्थिति समर्थ होना, ये ऑनेस्टी है। हर समय सदा हर समय स्थिति शक्तिशाली होना, अगर नहीं है इसका मतलब अपवित्रता। ऐसे भी अर्थ हो गया उसका, स्थिति सदैव समर्थ नहीं है, समर्थ स्थिति मतलब बिल्कुल हलचल नहीं उसमें, डगमग नहीं है। समर्थ स्थिति नहीं तो अपवित्रता। तो हमारी स्थिति हमेशा शिवानंद भाई समर्थ होनी चाहिए, शक्तिशाली। अच्छा लडोल
साथ
है, हाथ में हाथ बस। पर वो याद रहना चाहिए, बाबा ने कभी परसों कहा था ना, याद कैसी है बाप की, पारे मिसल पारा रहता है ना मर्क्यूरी, यहाँ गिरा पकड़ने जाओ तो उधर 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 अब गिर गया। वो जो हम यहाँ लिक्विड, हम जो थर्मा हमारा बीपीएम जिससे मापते हैं ना, उसमें जो ऊपर जाता है वो मर्क्यूरी है, वो अगर गिर गया बाहर तो उसको पकड़ नहीं पाते, बिल्कुल नहीं पकड़ सकते, हाथ में आता ही नहीं है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ और बाहर, और नीचे नीचे गिरा उसको पकड़ ही नहीं सकता है कोई, ऐसे पकड़ो तो निकला। मर्क्यूरी एलिमेंट है, एक तत्व है,
धातु है,
धातु मर्क्यूरी, पॉइजनिंग होता है मर्क्यूरी से अगर वो खा लिया तो किसी ने तो डेथ होती है। उसका एक ट्रीटमेंट है सेपरेट, अपना मेडिकल कंडीशन है। तो बाप की याद कैसी है, बारे में तो मर्क्यूरी जैसे याद और पढ़ाई,
वहाँ से जाते छेद होके बाहर, छेद होके निकल जाता
क्या,
खा जाए तो एकदम
छेद तो नहीं करता है वो, इरोसिव नहीं है। लास्ट ट्रीटमेंट उसमें डायलिसिस करना होता है बहुत ज्यादा अगर किसी ने ले लिया तो। इसके लिए मर्क्यूरी वाले ये जो थर्मामीटर अभी ये यूज नहीं कर रहे थे, आर फेजिंग आउट, अभी नए आ रहे डिजिटल, कई देशों में ये नहीं यूज होता, केवल भारत में रह गया अभी, वो चला जाएगा क्योंकि उससे पॉइजनिंग होता है, वातावरण दूषित होता है ऐसे कहते हैं। तो बाबा की याद पारे मिसल है, और पढ़ाई ज्ञान योग पारे, याद तो पारे मिसल है, पढ़ाई बाबा ने कहा माया किसमें विघ्न डालती है, योग में, और पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई में नहीं डालती,
डाल देती है वैसे तो
समय पर याद रहता है,
बंद हो जाती है
समय समय पर याद रहता है ज्ञान
भूल जाते
तो वो माया तो सब जगह
याद नहीं याद
याद में भी डालती है और पढ़ाई में भी डालती है। पढ़ाई ज्ञान भूल जाता है परिस्थितियों के समय, परिस्थितियों के समय पता ही नहीं रहता है किसी ने अपमान कर दिया उस समय याद रहता है मैं योगी हूँ, मैं योगी हूँ न मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ सब समान ठंडी गर्मी
मतलब समान हो जाते हैं वो सब वो समान रहते
हैं तो
प्राइवेट
कहाँ पर थे हम निमित्त निर्माण नहीं नहीं वो हो गया
वो तो सहयोग
समर्थ स्थिति समर्थ हर संकल्प में समर्थ स्थिति का अनुभव ठीक ये उसके बाद में नहीं
हर कदम चढ़ेगा
हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव चढ़ती कला अर्थात कला को निकाल दो अवस्था को डाल दो वहां पर शब्द तो समझने में अच्छा होता है चढ़ती अवस्था ऊपर प्रोग्रेस हर एक अपने आप को देखे कि पिछले एक साल या पिछले छह मास में मैंने कितनी उन्नति की है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कितनी की है सेवाएं कितने की नहीं आध्यात्मिक उन्नति कितनी की है हमने जो पांच साल पहले मेरी जो स्थिति थी एक बात आती थी तो मैं डिस्टर्ब हो जाता था आज अगर वही बात आ गई तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ यह है आध्यात्मिक उन्नति छह मास पहले इस बात से रोना आता था अभी रोना आता है यह है आध्यात्मिक उन्नति कितनी हो रही है चढ़ती कला कला अर्थात अलग अलग स्टेज इंग्लिश ट्रांसलेशन में असेंडिंग स्टेज दिया है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आज की जो इंग्लिश मुरली है हाँ स्टेज स्टेज ऊपर चढ़ रही है हम वो हमारी चढ़ती है या गिरती है कल जो अवस्था थी उससे आज की अवस्था कैसी है सुबह जो अवस्था थी उससे अभी की अवस्था आगे है या पीछे है ये चढ़ती कला तो ये
फरिश्ता तो नहीं बनते ना
फरिश्ता बनेंगे थोड़ी देर मुरली के बाद आएगा पांडव भी बन
जाएंगे पहले आपका ठटक होता था अभी
आध्यात्मिक उन्नति स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमारा पुरुषार्थ का ग्राफ कैसा है ऐसा है या ऐसा ऐसे 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 होगा
स्पिरिचुअल टेंशन वाला ग्राफ होगा
कैसा है ग्राफ कैसा है शुरुआत यहाँ पुरुषार्थ किया फिर ऊपर अच्छा पुरुषार्थ किया फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे सीधा ऊपर ही ऊपर जा रहा है कैसा जा रहा है वो चार्ट ग्राफ बनाना होता है ना चार्ट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे प्लॉट करो टाइम और पुरुषार्थ तो दूसरा पॉइंट उसके बाद में कितने हो गए पांच हो गए छठवा चढ़ती कला हो गया फिर आगे
संकल्प बोल करो
वो हो गया प्रत्यक्षता वाली पॉइंट है अभी माता जी ने जो बोला जैसे बाप जैसा है वैसे है बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है वैसे बच्चे भी जो है जैसे है बाप के सामने अपने आप को स्वयं को प्रत्यक्ष करो ऐसे नहीं कि बाप सब कुछ जानते हैं ये नहीं समझो कुछ बताते हैं कुछ छिपाते हैं ये वाला उदाहरण दिया ना बाबा ने कुछ छिपाते हैं और कुछ बताते हैं फिर उसके बाद में वो सब बातें बताई कुछ कुछ बच्चे तो इतने चतुर है हाँ सर क्या बताते हैं सेल्वेशन के स्वार्थ की प्राप्ति सेल्वेशन की प्राप्ति के स्वार्थ की प्राप्ति इसके बारे में स्वार्थ ये तीन बातें होती
हैं स्वार्थ की
भावना से वो बताते हैं और सज धज कर सब स्वयं की केस को सज धज कर बड़ों के सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि जैसे वही सच राइट है वही रियल है वही सच्चे है अपने आप को सच्चा सिद्ध करने की प्रयत्न करते हैं और पर जो बड़े हैं वो भी क्या करते हैं उनको क्या समझते हैं या तो बाबा के सामने बाप को भोलानाथ समझते हैं या निमित्त बनी हुई आत्माओं को भोले समझकर ऐसा अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं पर वो लोग भी क्या है वो ज्ञानी है वो लोग भी क्या समझते हैं जानते हैं राज को जानते हैं कौन से राज को कि हर आत्मा यथा सहन करने की शक्ति सामना करने की शक्ति हर एक की अपनी अपनी है इस राज को जानते इस राज को जानने के कारण वो भी हाजी कह देते हैं खुश करने के लिए पर एक है राज को जानकर हाजी करना और एक है दिल से करना इसमें फर्क पड़ जाता है बाबा वो तो निमित्त बनी है उनको खुश करने के लिए, वो कह देती है। और ये क्या समझती है, ये तो अल्पकाल का इनका जो ये समझते हैं कि उनको भोले समझते, पर भोले वो खुद है,
खुद बन जाते हैं।
जन्म जन्म की तो हार हो जाती है, अल्पकाल की जीत होती है, खाली अल्पकाल की सफलता मिलती है, पर जन्म जन्म की उनकी हार हो जाती है। ये बहुत डीप पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत डीप है।
और वो हम क्यों करते, क्योंकि वो समझते यदि हम ऐसा
नहीं करेंगे तो वो उदास हो जाएंगे,
गिर जाएंगे।
ठीक है,
नाराज
नहीं करते। ये ज्ञान तो ऐसा है, इसका एक लाइन पढ़ने के बाद में उसको छोड़ा नहीं जा सकता, उस पर एक एक लाइन, पर बाबा का एक एक लाइन लाखों का वर्षन है, उसमें चिंतन की आवश्यकता है। चिंतन भी बहुत गहराई से कि ऐसा क्यों कहा, इसका क्या अर्थ है, किस अर्थ से इसको कहा गया है।
हर कर्म एकादशी होकर करो, जो बोलता
है
ये बच्चे मुझे
प्रिय
है, जो ज्ञान का शौकीन है, ज्ञान के जो शौकीन है। और योग का नशा,
कोई कोई भावना वाले, पर भावना से भी वर्षे के अधिकारी बन जाते
हैं,
वो दूसरी बात है, पर पद नहीं पाएंगे,
राजाई में आ जाएंगे,
राजाई में वर्षा तो मिल जाएगा, पर भावना के आधार से, जिनमें ज्ञान नहीं है, जानते कुछ नहीं। तो बाबा कहते रजिस्टर नहीं, वो आगे है, चलो पार्टियों से मुलाकात में दिव्य बुद्धि यंत्र। तो यहाँ पर भी बाबा ने बोला जो है जैसे है, बाबा के सामने स्वयं को प्रत्यक्ष करो, स्पष्ट कर दो, ऐसा करोगे तो चढ़ती कला होगी। बाबा ने वो आगे है, चढ़ती कला का आधार भी यही है, स्वयं को स्पष्ट करेंगे तो ये स्पष्टता ही श्रेष्ठता का आधार है, यही बुद्धि का बोझ समाप्त हो जाएगा बाप को देकर, स्पष्ट करना अर्थात स्वयं को स्पष्ट करना। बाबा कहते हैं ना जो भी है सब बता दो बाप को, लिख के बता दो, हमने ये ऐसी ऐसी गलती की,
चढ़ती कला का साधन बनेगा, बुद्धि
स्पष्ट होगी और स्पष्ट भी होगा, स्पष्टता ही स्पष्टता करेगी, पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा,
पुरुषार्थ का
मार्ग स्पष्ट करेगा, ये स्पष्टता ही पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट करेगा। तो ये दो तीन बातें वहां पर हो जाएगा। अपनी गलती होने के बाद किसी को वो महात्मा गांधी के जीवन में दिखाते, जब वो 13 साल का था तो उनको एक आदत पड़ गई थी वो बीड़ी पीने की, टुकड़े चुरा चुरा के, और फिर वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने उसके जो अंकल थे उसके भी थोड़े से पैसे चुराए थे। पर उसको जब रियलाइज हो गया कि मेरे से बहुत गलती हो गई, और उनको पता था उनके जो पिताजी हैं वो तो एकदम धर्मनिष्ठ है, तो अगर उनको अगर पता चला मैंने ये किया तो वो तो जैसे आत्महत्या कर लेंगे, ऐसे उसको लगा। तो उसने क्या किया कि लिखा कागज पे लेटर और उनको जाके दे दिया अपने पिताजी को कि मैंने ये गलती की है, पर मुझे रियलाइज हो गया है इसके बाद मैं ये गलती नहीं करूंगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने आप को कोई तकलीफ ना दे ये पढ़ने के बाद, क्योंकि उसको ये भी डर था कि ये कुछ कर देंगे अपने आप को, इतना पूरी बात उन्होंने लिखी और पूरा स्वच्छ। तो उसके पिताजी तो कुछ उसको बीमारी थी, वो लेटे हुए थे, और वो जब पढ़ा तो इतने आंसू आ गए, पर इसको कुछ नहीं कहा उन्होंने, उसको पता चल गया कि इसको तो रियलाइज हो गया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है उसको, उसको पता चल गया। और फिर उसने कहा दोनों रोते हैं बैठकर, पर उसके बाद उन्होंने फिर वो जो चोरी है वो जीवन में कभी नहीं की, संकल्प ही नहीं आया कभी कि ऐसा करना भी चाहिए। तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि पश्चाताप शुद्ध हृदय से जब किया जाता है बहुत डीप रियलाइजेशन के साथ, तो वो गलती वापस नहीं होती।
वो आया वरदान में
महसूसता की शक्ति, बाबा ने उस दिन कहा ना, महसूसता की शक्ति जब खत्म हो जाती है तो उनको ये भी नहीं पता चलता राइट क्या है, रॉन्ग क्या है,
रॉन्ग
को ही वो राइट समझने लगते हैं, तो ऐसा हो जाता है, महसूसता की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो महसूसता की शक्ति वो भी एक बहुत अच्छी शक्ति, पावर ऑफ रियलाइजेशन। तो ये था एक सेवेंथ, और फिर आठवां, सातवां कदम बाप से जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन का आधार प्राप्ति और अनुभव। अगर प्राप्ति और अनुभव ये फाउंडेशन नहीं है तो क्या होगा? अरे बोलो ना,
हिलेंगे,
संशय बुद्धि, निश्चय बुद्धि, संशय बुद्धि हो जाएगा, बात बदली और स्थिति बदल जाएगी। तो हर बात का फाउंडेशन बाबा ने कहा प्राप्ति और अनुभव, ये दो छोड़ के अगर कोई किसी दूसरे आधार से अगर कोई ज्ञान में आता है तो ज्यादा समय नहीं टिक सकता। प्राप्ति क्या क्या, उसको स्वयं क्या क्या प्राप्ति हो रही है, मे बी अमृत वेले उसको क्या अनुभव हो रहा है, और प्राप्तियां क्या क्या हो रही है, ज्ञान से उसको क्या क्या प्राप्ति हो रही है, प्यूरिटी धारण करने के बाद उसको क्या क्या प्राप्ति हो रही है, तो वो टिक सकेगा इस ज्ञान में। नहीं तो बाबा ने कहा नहीं टिक सकते इसमें। उदाहरण बाबा ने दिया विनाश का, 1977, वो तो 77 की मूवी है। तो बाबा ने उसमें कहा ना, कई बच्चों ने विनाश का कनेक्शन, पवित्रता का कनेक्शन विनाश के साथ थोड़ी है। कई लोग जब ये सुन के आधे तो चले गए, पलायन करके गए, उन्होंने कहा पवित्रता मुश्किल लगती है। बाप ने कभी पवित्रता की सीमा कही है क्या? बाबा ने कहा कि हद की सीमा थोड़ी ना है, पवित्रता तो तुम्हारा निजी संस्कार है, ब्राह्मण जन्म का निजी, इसी में कहा है ब्राह्मण जन्म का निजी संस्कार है, उसका विनाश की डेट से क्या संबंध है? बाबा ने कहा ना उसमें, तुम स्लोगन में क्या लिखते हो, सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा बाप से ले लो, सदा काल के लिए लिखते हो ना, तो सदा काल की पवित्रता है। वो तो हद के सन्यासी है, तुम तो हो तुम बेहद के सन्यासियों का, अपवित्रता से सन्यास है भगवान का, सदा काल का तुम बेहद के सन्यासियों का, अपवित्रता का सन्यास है सदा काल का। ये उदाहरण दिया है बाबा ने विनाश का। और तो प्राप्ति और अनुभव,
अनुभव के पार्टी तो
रुपया है,
अपनी क्या क्या प्राप्ति हुई है उसका रोज एक रिवीजन चाहिए, चिंतन मन में, मैं यहाँ आया क्या क्या प्राप्तियां मुझे हुई है। ज्ञान में लंबा समय चलते चलते विस्मृति हो जाती है कि प्राप्ति भी कुछ हुई है। जब भी कोई सामने कोई आता है और हम उसको सुनाने लगते हैं तो हमको याद आता है हमारी सारी प्राप्ति है अचानक से, पर अदरवाइज वो सुषुप्त अवस्था में रहती है प्राप्तियां। प्राप्तियां क्या क्या हो, वो प्राप्तियां रिवाइज होनी चाहिए, हर एक लिखना चाहिए कि मुझे क्या क्या मिला, बाप से क्या क्या मिला, मधुबन से क्या क्या मिला, इस जीवन से क्या क्या मिला, क्या परिवार से क्या क्या मिला, पहले क्या थे अब क्या है, ये चिंतन के, चिंतन अगर नहीं है तो ज्ञान मर्ज हो जाते हैं। मर्ज चाहिए प्राप्ति और दूसरा अनुभव, हर दिन हमारा अच्छा अच्छा अनुभव हो हर चीज से, चाहे अमृत वेला, योग और ज्ञान दोनों में, सेवाओं में भी। फिर आगे क्या बोला बाबा ने, ये खत्म हो गया तो वापस रिवीजन, सात बातें हैं। बोलो राजेश भाई, सात बातें कौन कौन सी? पवित्रता अर्थात सबसे पहला
ईमानदार,
सच्चा रहना, रियलिटी एक। दूसरा निखिलेश भाई, जो खजाने प्राप्त है उसको बाप के कार्य के लिए यूज करना, और बाप का कार्य विश्व कल्याण अर्थ है, तो केवल विश्व कल्याण अर्थ है। श्रीमत अनुसार मनमत परमत मिक्स ना हो, स्वमान के बजाय अभिमान ना आ जाए, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन ना आ जाए, व्यर्थ चिंतन में ना चला जाए। तो जो भी खजाने हैं वो सबको कार्य में लगाना, ये है संपूर्ण पवित्रता। उसके बाद और दो हो गए, शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना कहो, श्रेष्ठ भावना कहो, श्रेष्ठ कामना, हर संकल्प वाणी कर्म में निमित्त और कर्म। उसके बाद चढ़ती कला का अनुभव, समर्थ स्थिति का अनुभव, बाप के साथ और हाथ का अनुभव, सदा सदा समर्थ स्थिति का अनुभव,
बिल्कुल भी कमजोरी ना आए,
बिल्कुल भी कमजोरी ना, सदा समर्थ स्थिति।
सीट पर आगे
आगे साक्षी फरिश्ता आगे आगे, और भी दो, प्रत्यक्ष करना स्वयं को बाप के आगे, प्रत्यक्ष करना जैसे बाप जैसा है वैसे स्वयं को प्रत्यक्ष करता है, इसलिए स्वयं को भी जैसे हम हैं वैसे प्रत्यक्ष करना है, मनमत परमत अनुसार नहीं, मनमत परमत के आधार से अपने को सज धजा कर प्रत्यक्ष करना नहीं, स्वयं को सिद्ध करने के हिसाब से प्रत्यक्ष करना नहीं, जो है जैसे है वैसे सत्य, ऐसे बच्चे बाबा को प्रिय है।
तो कहा ना बाबा, माने जैसे बाबा किसी से नहीं होता है तो उसके जैसे एक्टिव
आगे है, आगे पार्टियों से मुलाकात,
समान बनने,
वो समान बनने की बात है, तो ये भी वहाँ पर गया थी। फिर उसके बाद में आखिरी सातवां अनुभव और प्राप्ति, हमारे जीवन का फाउंडेशन अनुभव और प्राप्ति, पवित्रता। ब्राह्मण हमारा निजी संस्कार है। लास्ट संडे की मुरली में भी था ना, आत्मा के जो गुण है, स्वरूप है, उसका अनुभव करो एक एक गुण का। पार्टियों से मुलाकात में था ना, आत्मा का सुख, शांति, पवित्रता, एक एक गुण का। बीच में साकार मुरली में भी था ना, बाबा ने भी कहा मैं शांत स्वरूप हूँ अभी चार पांच दिन पहले, शांति, शांति की ढूंढने के लिए जंगलों में जाते हैं भटकने के, भटकते हुए, पर वहाँ शांति उनको मिलती नहीं है क्योंकि शांति शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो शांति एक शक्ति भी है, शांति एक गुण भी है, शांति गुण स्वधर्म। हाँ, वो उदाहरण मुरली में भी आया था ना हार का। तो पवित्रता अर्थात कितनी सारी बातें आ गई, पवित्रता अर्थात सच्चा रहना, पवित्रता अर्थात खजानों को यूज करना जैसे बाप के डायरेक्शन में, पवित्रता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, चरती कला का अनुभव, समर्थ स्थिति का अनुभव, ये सारा पवित्रता है। अगर ये देखा तो ऐसा लगता है ये तो पता ही था हमको पहले से, ये शब्द तो सुने हुए हैं सारे। अभी बाबा ने सबको पवित्रता के, अभी निमित्त निर्माण किसने नहीं सुना है, सबने सुना है, चरती कला सबने सुना है, पर उसके साथ जोड़ दिया
कनेक्शन जितना
लिंक, ये ऐसा अगर हम चिंतन करें ना तो बहुत स्पष्ट होता है। फिर बार बार एक ही बात है पर वो बार बार इसके लिए दोहराई जाती है कि मन में वो अंदर बैठ जाए स्वयं का बाप पर। ये भी बाबा ने एक मुरली में कहा, केवल इस जन्म की जीवन कहानी लिखकर बाप को सुनाने से पिछले जन्म के पाप भस्म नहीं होंगे, वो भी है, उसके लिए योग करना पड़ेगा। आज तो बोला ना, तुम अपना सारा सुना दो बाप को, स्पष्ट कर दो बाप के सामने, जो हो वो स्पष्ट कर दो, उसको भी पवित्र हल्का हो जाएगा,
बाकी योग सहज हो जाएगा।
हाँ, योग सहज हो जाएगा। इसके लिए ज्ञान का महत्व है। ब्राह्मण आत्मा किसके पीछे भागती है? योग के पीछे भागती है और सेवाओं के पीछे भागती है। ज्ञान के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, ज्ञान का चिंतन बहुत कम लोग करते हैं।
ज्ञान ही आधार है योग
का, ज्ञान को खाली मुरली सुनने तक सीमित रखा है।
बराबर चाहिए, एक कम हो तो बैलेंस।
पर हमारा पहला सब्जेक्ट ज्ञान है, ये भूलना नहीं है।
ज्ञान जो है ना सेवाओं में भी बैलेंस रखता है, अगर आपको वज रूप में रहता है, इमर्ज रूप में, मर्ज हो गया तो वही लपड़ा।
ज्ञान हमारा फाउंडेशन है, गीता ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में और कुछ नहीं। गीता के महावाक्य है, नहीं ज्ञाने न शत्रुषम पवित्र मिदम उत्तर, ये ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ पवित्र करने वाला है। ज्ञान है तो फिर अच्छा योग है, योग है तो धारणाएं अपने आप है, ये तीनों है तो ये तीनों के आधार से सेवा अपने आप हो ही रही है।
सेवा तो हुई पड़ी,
सेवा तो होनी है,
ज्ञान योग से धारणा।
ब्राह्मण आत्मा तो जहाँ खड़ी है वहाँ सेवा है, केवल ड्रेस भी सेवा करता है ब्राह्मण आत्मा का, प्योरिटी की बात है,
ज्ञान वाली योग।
तो ये थी अव्यक्त वाणी। उसके बाद है पार्टियों से मुलाकात वन,
चप्पल बात।
तो पार्टियों से मुलाकात, बोलो आशीष में क्या है पार्टियों से मुलाकात में, फर्स्ट पैराग्राफ। अभी इधर थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है कुछ आज, अभी इधर से चालू कर, अभी मुरली तो हो गई, अभी पार्टियों से मुलाकात बोलो। स्वयं को क्या समझते हो? फरिश्ता नहीं,
सबसे पहले दूसरी बार,
सेकंड फर्स्ट, वो सेकंड 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 ये है नंबर, फर्स्ट नंबर। क्या समझते हो योगेंद्र में? विजयी, विजयी बोला ना मामा ने, सदा विजयी, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी। श्रेष्ठ आत्मा है जो है उन्हीं का गायन है विजय माला में, केवल विजय माला गायन नहीं, केवल माला का गायन नहीं, विजय माला। तो जो श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा है उनका विजय माला में गायन।
माला में रहते हो या माला,
माला में अंदर रहते हो या निकल जाते हो, कभी निकलते फिर वापस आते हैं, फिर वापस बाहर, फिर अंदर, अंदर बाहर, अंदर बाहर।
सदा विजय कैसे होंगे?
मास्टर सर्वशक्तिमान बनाएंगे।
नहीं बाबा पहले माला बनाते थे ऐसे सकार में ऐसे बनाते थे
पता तो नहीं है सुना नहीं कभी फिर बाबा
नहीं नहीं बाबा देखते हैं कि आज जो स्थिति है उस अनुसार वो बच्चा ए नंबर पे हो सकता है लेकिन कल देखते हैं
ब्राह्मणों की माला नहीं बनती प्रभाव ने कहा एक दिन बन जाएगी लास्ट हफ्ते में मुरली थी ना साकार उसमें था ना अंत में ब्राह्मणों की माला बन जाएगी बाबा ने बोला
फरिश्तों की माला होंगी ना
चलो फरिश्तों की बोल दो
ब्राह्मणों
की बनती है नहीं
सेकंड पैराग्राफ इधर रुको निखिलेश भाई सेकंड पैराग्राफ अरे ना पहले ही ना अरे नहीं ऐसे क्यों कर दो
आएगा
करो करो याद करो
सारी मुरली याद
है ये मुरली है ना इसलिए सच्चा बोल दिया
अच्छा वो भी सही है बाबा ने पूछा है भूल क्यों होती है अभी बताओ
भूल क्यों होती है
चेक करके चेंज नहीं
किया तो
अगर खाली चेक किया तो
फिर जाएगी
उस दिन का वरदान था ना परसों का अगर खाली अगर चेक किया तो दिल शिकस्त हो जाएंगे मेरे में ये कमी है वो कमी है ऐसा वैसा तो चेक करो और साथ में चेंज करो
करने के लिए भी तो चाहिए
आगे आगे चल लगे
अभी
याद आ रहा है क्या चाहिए चेक करने के लिए दिव्य बुद्धि का यंत्र चाहिए बाबा ने दिव्य बुद्धि का यंत्र होना चाहिए चेक करने के लिए चार्ट तो रखते हो परंतु दिव्य बुद्धि के यंत्र से चार्ट को चेक करो हाँ अगर वो यंत्र भी अगर काम नहीं करा तो यंत्र भी अगर ठीक नहीं होगा तो उल्टे होंगे उसका रिजल्ट उल्टे ही होगी बाबा ने तो दिव्य बुद्धि के यंत्र से स्वयं को चेक करना और फिर चेक करके स्वयं को चेंज करना चेक और चेंज तो चेक करने की सबसे पहली प्रोसेस है चेक करना हाँ जो युक्तियां मिली हुई है समय समय पर जो युक्तियां मिली है उनको यूज नहीं करते कार्य में नहीं लगाते तो जो युक्तियां मिली है उनको यूज करना तो भूल होने का कारण है कि घड़ी घड़ी चेक नहीं करते भगवान बार बार घड़ी घड़ी स्वयं को चेक करते रहो
सब कुछ सदा
हाँ तो ये हो गया चेक और चेंज अभी सेकंड पैराग्राफ
तो
वही उल्टा 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 गलत को भी
रॉन्ग को राइट
रॉन्ग को राइट
और गलत को रॉन्ग समझ लेते
ये तो हो गया पार्टियों से मुलाकात फर्स्ट पैराग्राफ अभी सेकंड पैराग्राफ सेकंड पॉइंट उसमें चार पैराग्राफ है फरिश्ताबाद में उसके पहले बाबा ने हाँ लाइट स्वरूप का है ब्रह्मा बाप समान लाइट के कार्य में सदा रहते हो लाइट के कार्य में सदा रहते हो जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त वतन में फरिश्ते रूप से सेवा कर रहे हो वैसे सेवा करते हो फिर बाबा ने वहाँ स्नेह की पॉइंट बताई कि जिसके प्यार स्नेह जिससे स्नेह होता है उसकी निशानी है समान उसके जैसे जैसे वो बोलता है वैसे ये बोलता है तो जैसे स्नेह होता है वैसे ही संस्कार मिलाना और स्नेह ये दोनों की बातें बताई बाबा ने वहाँ पे तो जब स्नेह है तब संस्कार मिलाएंगे और संस्कार मिलेंगे तब स्नेह होगा ऐसा भी बोला दोनों बातें हैं वहाँ पर
जब
स्नेह स्नेही बनना मुश्किल है बाबा ने कहा दोनों बातें हैं नहीं होंगे तो संस्कार मिलेंगे तो स्नेह होंगे फिर उसके बाद में ये वही घुमाया है ये तो होगा पहला फिर उसके बाद में इसका स्नेह का रिटर्न क्या देंगे तो वहां पे कहा ना बाबा ने अभी भी फरिश्ता बने हो क्या अभी भी देह आकर्षित करता है आकारी रूप में रहेंगे तो देह की आकर्षण नहीं आकारी रूप में रहेंगे तो देह की आकर्षण कितनी बहुत अच्छा पॉइंट है ये पूरा मुरली का हाँ आकारी रूप में रहेंगे तो देह आकर्षित क्योंकि आत्मा को सबसे ज्यादा आकर्षण देह ही अच्छी लगती है उसको सब पता है देह में बीमारी आने वाली है बुढ़ापा आने वाला है मरने वाला है फिर भी देह ही अच्छा लगता है क्या करे वो पता है ये जो रूप है सुंदर ये असुंदर बनने वाला है कुरूप बनने वाला है बीमार होने वाला है वृद्धावस्था को पाने वाला है फिर भी देह ही अच्छा लगता है उसको पता है देह में कुछ भी कितना भी अच्छा खिला उसको खिलाने के बाद एक घंटे के बाद कुछ सुख है वो तो गया इधर से नीचे यहीं तक है टेस्ट
दो दिन तो क्या हालत हो जाएगी कितना खराब हो जाएगा
क्या देह ही अच्छा लगता है देह से ज्यादा उसको संसार में कोई चीज प्रिय नहीं
देह से सारी
खुद का भी देह प्रिय है और दूसरों का भी प्रिय है
नहीं,
उसी के कारण तो विकार
है। के लिए प्राप्ति होने वाली है, देह नहीं तो कहाँ से प्राप्ति करेंगे, शरीर की विगत।
वो आप दूसरे अर्थ से बता रहे हो, वो संभालने की बात अलग है। देह को
चतुराई,
अगर देह नहीं तो आत्मा सिर्फ कुछ नहीं कर
बोले बन रहे हो
प्यार से सेवा करो, उसको भी प्यार से चलाओ और इससे भी लाड़ प्यार करो।
जानबूझ के बोले याद कराने के लिए।
एक दिन कुछ हो जाता है तो कैसे होता है, डॉक्टर को है दौड़े जाएंगे सचिन।
अरे एक बात बताओ, मना खराब बात है पर हंसी की बात है। मतलब मैं जहाँ गया था ना, वहाँ पे कुछ बहनें बीमार हो गई थी, तो नहीं इतनी बीमार भी नहीं, चलती फिरती। हैदराबाद और उसके आसपास थोड़ा एरिया था वहाँ पे। तो दो बहनें थी, मेरे साथ दूसरे भाई थे, वो उसी हॉस्पिटल में, तो लेके गए। तो वो बहनें काफी देर तक बाहर खड़ी थी, तो उसको कुछ ना ऐसी थकावट कमजोरी ऐसी टाइप का था। तो वो उनका टाइम आ गया, 11 बजे का टाइम दिया था, पर ये पहुंचे 12 बजे। टाइम पर तो ये नहीं पहुंचे जितना टाइम दिया, और फिर काफी देर तक रुके, और फिर बीच में सीरियस पेशेंट आ गया। सीरियस पेशेंट अंदर चला गया, तो ये बहने इतनी गुस्सा आ गया कि उसको कैसे ले लिया पहले। और बोलती है कि उन्होंने कहा वो भाई कि भाई सीरियस था, तो हम सीरियस नहीं है क्या। और डॉक्टर को भी सुना दिया दो तीन, वो भी सोच रहा है अभी क्या बोलूं। तुम तो शांति का संदेश देते हो और ये तो देह जब बीमार होता है ना पूरा वो ज्ञान योग सब कहाँ पता नहीं कहाँ याद ही नहीं रहता है। बीमार होने के बाद में अगर कोई देखने नहीं आया तो हम 2 दिन से बीमार है, ठीक है, हम कमरे में हैं, बीमार पड़े हैं। हमारे रूम पार्टनर पूछता भी नहीं कि बीमार हो, खाना खाया नहीं खाया, कुछ भी नहीं पूछता है। हम सोचते हैं शायद कोई देखे हमको, पूछे कोई दवाई दे।
इसमें पेपर होता है,
पेपर सच्चा पेपर वहाँ होता है बीमारी के समय। बाकी तो बहुत अच्छा है, अभी कोई नहीं चाहिए, हम जब स्वस्थ है, जब बीमार पड़ते हैं तब रियल स्थिति की परीक्षा होती है।
ऐसी गोलियाँ होती है वो याद आने नहीं देती है, सारा दिमाग ही निष्क्रिय
हो जाता है। मैंने कहा था ना, एक भाई हम बहुत पहले जब मैं 2003 में इधर था शांतिवन का, कोई एक भाई इधर एडमिट था हॉस्पिटल में, तो उसको सेवादारी नहीं आ रहा था। वो भाई इतनी सेवा की थी उसने, 2-3 कितने 30 साल तक सेवा की होगी, बहुत सेवा की, पर योग कभी नहीं किया, ना ही ज्ञान में कोई इंटरेस्ट, खाली सेवा 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 सेवा। और जब बीमार पड़ा तो कोई नहीं था, फिर आ नहीं रहा था कोई, या भेजे कुछ तो हुआ था, तो उसको संकल्प आ रहे थे फिर कि अगर मैंने शादी कर ली होती तो आज ये हाल नहीं होता, मेरे बच्चे मेरे बीवी मुझे देखते थे। समर्पित भाई, समर्पित भाई की ये अवस्था अंत में, जबकि बीमार पड़ा है, पूरा जीवन दे दिया तब ये अवस्था, और वो एक इसी दुख में उसने शरीर छोड़ा। वो बाद में पता नहीं मुझे यहाँ या कहीं पंजाब कहीं चला गया, वहां पे उसने शरीर छोड़ा, बट बहुत दुखी होकर। तो केवल सेवा 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 सेवा, चारों सब्जेक्ट में अटेंशन चाहिए, स्थिति ऊपर चाहिए, चिंतन चाहिए, अवस्था शक्तिशाली चाहिए, नहीं तो बीमारी आई और गए।
ये 7 दिन की मुरली में प्रश्न है ना, बीमार पड़े
चढ़ने की बात नहीं है, बीमारियां निकलेगी बार में, अच्छा है खुश हो, पर वो ज्ञान सब
ड्रामा ही रहता ज्ञान का भी।
पता नहीं ज्ञान कहाँ चला जाता
है, हिसाब से क्यों हो रहा है।
बीमार पड़ो थोड़ा, 104 डिग्री बुखार, बीमार, ज्ञान याद आता है क्या? बुद्धि बाबा का योग लगाने की कोशिश करो, बुखार में जाती नहीं है ऊपर,
नहीं जाती,
बिल्कुल नहीं जाती, ऐसा लगता है बस पड़े रहो,
बीपी लो हो
जाए जो भी
बोले बाबा निकले, बाबा की शक्ल याद नहीं आएगी।
पर हमने दादियों को बहुत सारी ऐसी जो बड़ी बहनें उनको भी देखा, एकदम बहुत शक्तिशाली स्थिति, इतनी बीमार, इधर से प्रिक कर रहे उधर से कर रहे, कुछ नहीं, बिल्कुल खुश, ऐसी भी अवस्था है बहुत सारी बहनों को। बीएसएफ में कई बहनें आती थी मुंबई में, अच्छी अच्छी, उनकी बहुत अच्छी स्थिति भी देखी और एकदम डाउन स्थिति वाली भी देखी। वो एक बहन सेंटर की बहुत बड़ी बहन, बस कैंसर था, सब जगह फैला हुआ था, अभी बस जाने ही वाली है ऊपर, तो उसको सब मसाला डोसा खाना था, तो उसने तुरंत मसाला डोसा बनाने को बोला, मसाला डोसा ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, एकदम चिड़चिड़ा, सब और मसाला डोसा खाया और खाते खाते ही ऊपर बाबा के डोसे की याद में तृप्त होकर शरीर छोड़ दी। बाबा भी वह कुछ नहीं, बाबा याद ही नहीं रहता है, बीमारी में कहाँ कुछ याद रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इतना चिड़चिड़ी हो जाती आत्मा कि ये क्यों वो क्यों ऐसा क्यों, सब नहीं कुछ कुछ बता रहा हूँ जिनका ज्ञान योग में, पर कुछ कुछ हमने जो देखा वो तो बहुत अच्छी स्थिति में एकदम शांति से
जिसने पहले से प्रैक्टिस किया
हमने किया। ये बाबा ने कहा ना ये कमजोरी जो बोलते हैं ना अभी निकली है, अभी की नहीं होती है, लंबे समय की कमजोरियां निकलती है बाद में, आज की पार्टियों से मुलाकात में है ना
वैसी बात, ज्यादा कमाई होती
वो सोच स्थिति पर है,
स्थिति पर है।
अगर कोई भाई बहुत सेवा कर रहा है उसको फ्रैक्चर हो जाता है हॉस्पिटल में, अभी एक ये तो ये सोच के अपनी स्थिति को खराब कर सकता है, देखा फ्रैक्चर होगा अभी मैं क्या सेवा करूंगा, दो महीना रुकना है अभी ऐसे लटका के पैर, वो ऐसा भाई कि जो एक मिनट भी नहीं रुकता है सेवा के बगैर, पर अगर वो ये संकल्प कर ले कि ठीक है अभी तक वो सेवा की, अभी फ्रैक्चर हो गया अभी सकाल देने की सेवा करेंगे, मनसा सेवा करेंगे, ज्ञान योग करेंगे, विचारों का है खाली, अपने विचार को परिवर्तन कर दे और तुरंत अपनी स्थिति को ऊपर रख ले तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ये सोच के दुखी हो मेरे साथ ही क्यों हो,
मैं इतनी सेवा करता हूँ
देखा मेरे वजह से अभी पूरा उधर डिपार्टमेंट रुक गया है, क्या होगा डिपार्टमेंट का, क्या होगा सेवा का, सोच के दुखी भी हो सकते हैं,
वो
तो
है
ही
इधर ठंडी हवा में और एकदम ओके है ना
सब इसलिए
चलो और क्या बोला फिर बाबा ने स्नेह के बारे में, स्नेह के रिटर्न के बारे में कहा, तो वो हम ये देह की बात कर रहे थे, देह सबसे ज्यादा खींचता है, बाबा ने अव्यक्त तो मुरली चली थी साकार फटाफट डॉक्टर के बोला थे कहीं देह छूट ना जाए, लास्ट हफ्ते में था ना तो कितना प्यार है आत्मा को, आत्मा देह को छोड़ना ही नहीं चाहती है चाहे कुछ भी हो, उसको मृत्यु का भय सबसे ज्यादा है आत्मा को, मृत्यु का भय जो है ना सबसे ज्यादा
बाबा ने
ब्राह्मणों की बात चल रही है,
बाबा ने बोला है कि इस शरीर में जितना भी रहेंगे तो बाबा को याद करेंगे, शरीर छूट जाए तो फिर याद तो
चतुराई
जितना भी बीमार हो याद तो करेंगे, बाबा बाबा करेंगे तो कमाई तो होंगी, अगर सोचेंगे
चलो वो हो गया, अभी थर्ड पैराग्राफ में और कुछ नहीं नहीं वो आगे अभी रुको वो महारथियों का है पूरा वो सारा लास्ट पैराग्राफ है, उससे पहले भी कुछ है यहाँ पे, वो फरिश्ता वाला है, तो फरिश्ते पहाड़ियों पर दिखाते हैं बाबा ने कहा साक्षी होकर सकाश देते हैं, साक्षी होकर सकाश देना है, अगर सीट पर सेट होकर सकाश देना है, सकाश देना अर्थात निभाना, निभाना अर्थात सहयोग देना, सहयोग देना अर्थात दृष्टि वृत्ति से सहयोग देना, अगर साक्षी हुए बिना सकाश देंगे तो सेक लग जाएगा बाबा ने कहा, वातावरण का सेक लग जाएगा, तो सकाश देने की सेवा जो है वो बहुत ऊंची अवस्था से करनी है, निर्लिप्त अवस्था से, किसी से मोह नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं,
एक ही सेंटेंस बोला उत्तर के नहीं दिया,
हाँ इस पे विशेष अटेंशन दो, ये शब्द है वहाँ पर, इस पर विशेष अटेंशन दो,
इस तरह से निभाना है,
ये यही निभाना है,
यही निभाना
है, तो सकाश भी क्यों देना, क्योंकि विश्व कल्याणार्थ निमित्त हो, इसके लिए हमको ही सकाश देना
है,
जैसा से वो आगे महारथियों के लिए, वो सारा महारथियों के लिए, मारती मारती अभी आएगा वो लास्ट बड़ा पैराग्राफ है,
इसमें बोला कि निभाना होना ऐसे नहीं मिक्स हो जाना,
हाँ
हाँ
मिक्स नहीं होना चाहिए, हाँ मिक्स वाली भी पॉइंट है,
एक मिक्स होना और सेक,
तो बाबा ने कहा है एक मुरली में कि सकाश देने की सेवा बिना बेहद के वैराग के नहीं हो सकती, जिनको हम सकाश दे रहे हैं उनसे हमारा मोह नहीं चाहिए, अगर हमारा बहुत मोह है और हम सकाश दे रहे तो सकाश नहीं पहुंचेगी, सकाश अर्थात बहुत ऊंची अवस्था में सीट पर सेट होकर और साक्षी भाव से, साक्षी भाव से जो सकाश देगी, फरिश्तों को बाबा ने कहा पहाड़ियों पर दिखाते, बहुत ऊंची
हल्का
दिखाते, ऊंची अवस्था में दिखाते, और सबके लिए समान प्यार होता है उनको, ऐसा नहीं इससे कम इससे ज्यादा, सब विश्व को सकाश देंगे, हाँ सब रिश्ता, अनेक नए नए बन के रिश्ते से समाप्त होना ही फरिश्ता, एक स्लोगन भी था ना, मेरे मेरे के रिश्ते से समाप्त करना ही रिश्ता बनना है। तो ये था फिर उसके बाद नहीं स्वार्थ पर उसमें हमारी जो स्थिति है ना, हम उसको ये मेरी माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, चाचा, ये रीति से नहीं, आत्मा समझ के देखो। जैसे हम मतलब वो भी ऐसा स्पेशल टाइम से नहीं, जैसे हम इनको इनको सकार दे रहे, बीच में उनको भी ला लिया, उनको भी दे रहे और बीच में भूल के वापस तीसरा सकार,
मतलब
ऐसे नहीं कि बस अब बस उनको ही सकाश देते बैठे, वो नहीं, सब सकाश दो, बीच में उनको भी डाल दो और आत्मा ही समझो और वापस आगे की आत्माओं पे आ जाओ। हाँ कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं, वो तो वैसा करना ही नहीं है उनको, बस आत्मा से जैसे हम प्रकृति को सकाश दे रहे, बीच में वो दो तीन आत्माएं आ जाए बीच में कि इन आत्माओं को भी सकाश दे दी, फिर वो गई, फिर दूसरी आ गई, उनको सकाश दिया, ऐसे अनासक्त। उसके बाद फिर है महारथियों की पॉइंट। तो बाबा ने फिर ये महारथियों से बात कर रहे हैं बाबा कि महारथियों को पहले जोश था, शुरू में जब आए तो उनको कितना जोश था, क्या था कि हम जिन को आप समान बनाए, जो बंधन युक्त है उनको बंधन मुक्त बनाए, सबको छुड़ाए, सबको लाए यहाँ पर, ऐसा जोश था। फायर ब्रिगेड का उदाहरण दिया, फायर ब्रिगेड वाले होते हैं ना, वो बिना आग बुझाए नहीं रह सकते, वो वैसे थे पहली अवस्था। तो अभी भी वो अवस्था है, बाबा ने कहा ये समझ के मत छोड़ दो कि ड्रामा है, ऐसा नहीं छोड़ देना है उनको, क्योंकि आप क्या हो, आपका टाइटल क्या है, महादानी, वरदानी, कल्याणकारी,
आपका पार्ट,
पार्ट ये पार्ट है ड्रामा में, विश्व कल्याणकारी, ये पार्ट है ड्रामा में, तो इसको भूलो नहीं, ये सब महारथियों के लिए है। फिर उसके बाद में बाबा ने वो तुम्हारा जो यादगार बताया है देवियों का, बाबा ने कहा एक आंख में मातृत्व और एक और हाथों में शस्त्र, संहार करने वाले और यहाँ पे रहम पालना, स्नेह और शक्ति, लॉ और लवफुल का बैलेंस, तो ऐसे बनना है। फिर बाबा ने वो कमजोरियों के बारे में बताया कि
कमजोरियों का भी संहार
करना,
हाँ उनको
जो दूसरी आत्माओं की कमजोरी है उनका संहार करना है। और फिर बाबा ने वो कमजोरियों के बारे में बोला, कमजोरियां अंत समय में सब निकलेगी, ऐसा मत समझो कि वो अभी निकली है, हाँ वो तीन लहरें कि वो जो है ना लंबे समय से जो कमजोरी चले वही अंत में लास्ट में प्रत्यक्षता का उसको भी चांस मिलेगा साक्षात्कार कराने के
लिए।
वो निकलेगी एक दिन, छिप नहीं सकती, भगवान ने कहा ना वो नहीं छिप,
हाँ
प्रत्यक्ष
डरना नहीं, मुख्य बात है डरना नहीं, दिल के कष्ट नहीं होना, डरना नहीं,
नहीं। फिर बाबा ने वो लहरों के बारे में, कोई नए नए आगे जाएंगे, कोई थक जाएंगे और कोई कोई की कमजोरियाँ,
नए नए आगे जाते
हैं
कंपत, ये सब यहीं पर है बाबा ने कहा, राजा कंपत, तो तुम्हारे हर संकल्प है हर आत्मा के लिए कल्याण की भावना सब यहीं पर है। उस दिन वो सर्कस का उदाहरण दिया ना परसों कि अच्छे एक्टर्स भी होते हैं, कुछ हल्के एक्टर्स भी होते हैं सर्कस में, परसों ही सैटरडे अकाली। तो ये थी आज की मुरली पूरा, वापस इसके ऊपर चिंतन करना, पवित्रता क्या है, और ये पार्टियों से मुलाकात। फरिश्ता बाबा ने दो रूप बताए उसमें, एक तो बाप समान अर्थात दादा समान और बाप समान, बाप समान अर्थात निराकारी आत्मा और बाप समान अर्थात दादा समान अर्थात फरिश्ता, चलते फिरते लाइट के कार्ब में साकारी रूप में, हाँ डबल संबंध है बाबा का, एक बाप का और एक वरदाता का, वरदाता वरदान देते हैं, सर्वशक्ति भव मास्टर सर्वशक्तिवान की वरदान देते हैं। चलो अब 10 मिनट और है, 5-10 मिनट एक हफ्ते का मुझे आज का स्लोगन मन बुद्धि को क्या कंट्रोल करो, पुराने हमें पुरानी देह संस्कार स्वभाव से कमजोरियों से न्यारा रहना ही विदेही बनना है, विदेही बहुत सारी मूल्यों में विदेही विदेही आया है। मन बुद्धि को कंट्रोल करो तो एक सेकंड में कंट्रोल करो तो विदेही बन जाएंगे।
लास्ट पेपर में
कौन सा पॉइंट रहेंगे हमारे जी, कौन सा रहेगा देखो,
निकालो माल, देखो ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी है ऐसी, समझे, ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी है ऐसे नोट।
मैं बोली अभी तो मैं जाऊँ तो क्या करूँ,
चलो एक हफ्ते का मुरली बोलो फटाफट, अरविंद भाई क्या बोला मैंने?
अपनी विशेषता और गुण को प्रभु प्रसाद है उसको मेरा समझना ही देहभान मंडे।
मेरा नहीं समझना कि मेरे में ये गुण है मेरे में ये, तो सब प्रभु प्रसाद। तुम्हारा कुछ है ही नहीं, उसने दिया वो ले लेगा, तुम्हारा कहाँ से आया? है ही नहीं कुछ, उसने बनाया।
ये देह भी मेरा नहीं,
ये तो हाईएस्ट स्टेज है।
अभी तो कह रहे थे बीमारी होगी।
अभी चलो इधर ही, तो
सबसे ज्यादा मुंह अपना देश में,
सबसे ज्यादा
अपना देश अपराध।
रहने वाले विश्व का, राजेश भाई बोलो फटाफट क्या बोला बाबा? गति के वाइब्रेशन फैलाओ, नजर से निहाल पर पूरी मुरली चली है। नजर से निहाल किंदा सदगुरु, तो बाप है सच्चा सच्चा सदगुरु, बाप है स्वामी, तो नजर से निहाल कर देते हैं बाबा। रिफ्रेश हवा खाने नहीं, ये भी चिंतन का विषय, हम यहाँ क्यों आते हैं? एक तो रिफ्रेश बहुत सारा इसमें आ सकता है, तपस्या करने, जगमोई झरमोई करने नहीं, वो जगमोई झरमोई का भी एक मुरली थी ना कि कोई कोई बच्चे और इतने हर्षित होकर सुनते हैं और सुनाते हैं, समय बर्बाद करते, खुश भी होते हैं बहुत।
आँखों में समाते कौन बच्चे हैं, जो तुम्ही से बोलूं,
ऐसे बच्चों को देखकर बाबा हर्षित होते हैं और बच्चे भी बाप को देखकर हर्षित होते हैं।
बाप की अच्छी डांस स्किल,
ज्ञान के शौकी, दान दान
और वो तो देते हैं।
साइलेंस अर्थात
सर्विस में
मर्जीवा,
मर्जीवा
जो मुझे जितना अच्छी तरह से याद करता है मैं उसको उतना अच्छी तरह से याद, जो मुझे अच्छी तरह याद करता है मैं उसको अच्छी तरह याद करता हूँ। माना बाबा किस किस को याद करे सबको, विश्व का मालिक बनना। ओके
फिर
माया अचानक के पेपर में पास करा जाए, और माया भी समर्थ है। ओ मामा माया कितनी शक्तिशाली है, कम नहीं है। अच्छा जिन्होंने खून से लिख के दिया था, जिन्होंने नाम रखा था बाबा ने जिनका, वो तो चले आज है नहीं। जिनको बाबा ने अव्यक्त बाबा ने जिनको दृष्टि दी होगी और जिनसे पर्सनल मुलाकात की थी, 10-10 मिनट बात की थी, वो आज नहीं है।
माया कितनी जबरदस्त,
माया तो बहुत जबरदस्त,
बाबा डायरेक्ट
दोनों की क्वालिटी लगभग काफी सारी
और दूसरा जब बाबा किसी को दृष्टि दे रहे थे और पता था ये छोड़ के जाने वाला है उसको, सब पता, फिर भी उसको पालना दी, फिर भी उसको दृष्टि दी, पर्सनल बात किया 10-10 मिनट और फिर भी छोड़ती गई।
वो उसका भाग्य वो लेके गया ना चाहिए,
नहीं वो तो अभी भी दे रहा होगा,
परमात्मा से जो प्राप्त करना है।
और बोलो माता,
छोड़ेगा थोड़ी भले जा रहे
हैं, हो गया। दूसरा
सब
विनाश, एक मुरली में था ना कि ये पुरानी देह और पुरानी दुनिया से जैसे नफरत आनी चाहिए। सोमवार की मुरली थी, सोमवार की मुरली, मोह की रगे टूट जानी चाहिए तुम्हारी, किसी में भी मोह नहीं है।
हाँ,
देह और दुनिया से जैसे नफरत आ जाए, देह से नफरत कैसे लाए, सोचना पड़ेगा देह के बारे में, नफरत आ जाएगी,
समझना चाहिए। थैली में जैसे गोबर
हो जाता है,
नहीं नहीं ये लिखना चाहिए, पॉइंट ऐसे 50-50 पॉइंट लिखी डालो, देह से मैं उपराम बनाने की भी,
वैराग्य के पॉइंट तो भी हो सकती, वैराग्य ये देह छींची है, पुराना है, गंदा है, विकारी है, पतित है, मिट्टी में मिल जाने वाला है, दुखदायी है, बीमार होता है,
भंडारे में जाते तो भूल जाते हैं,
भंडारे में जाते तो भूल। चलो और क्या बोला, और भी पॉइंट थे। नजर से निहाल वाली तो पूरी एक मुरली थी, उस पर वो वरदान में है, आ सकती। तो बाबा ने कहा कि किसी भी पदार्थ तुम्हारे कर्मेंद्रियों को विचलित ना करे, कोई भी पदार्थ तुम्हारी कर्मेंद्रियों की इच्छा है, ये भी जैसे आसक्तियों का रूप है, तो अच्छा लगना ये भी आसक्ति है, ये भी अच्छा बनने नहीं देगा। इच्छा रखना ये भी अच्छा अच्छा बनने नहीं देगा।
व्यक्ति में आसक्ति है तो वहाँ माया भी आ सकती
है। इंद्रियों का रस
कर्मेंद्रिय का रस
ब्राह्मण को सबसे
ऊंचा ब्राह्मण नहीं करो। सेमी कलंकित भी होते हैं कुछ कुछ बाबा ने कहा वहाँ पर। और फिर भाई भाई की दृष्टि का भी एक पॉइंट है, वो तो सन्यासी सन्यासी होते हैं, झोली में लिया और चले आगे, देखते भी नहीं, नहीं तो सोचते बुद्धि जाएगी। तो भाई बहन के रिश्ते में भी बाबा ने कहा उसमें भी धोखा हो सकता है, उसमें भी बुद्धि चलायमान होती है, जिसके लिए खाली भाई भाई की दृष्टि, सब भाई आत्माएं और कोई नहीं, बस बहुत सहज है ना। बाबा कहते मैं तुमको तकलीफ नहीं देता, बहुत अति सहज, आत्माभिमानी, तुमको देहाभिमान में नहीं आना है, आत्माभिमानी बनना है।
आत्माभिमानी बनो, निश्चय बन करो,
निश्चय होना चाहिए संशय। और बेहद के सन्यासी, और आगा भागा भी याद किया ना सतयुग के लिए, हीरे में उसको तोलते थे तो सतयुग में तो जैसे पत्थर पड़े हुए थे, हीरे पड़े रहे तुम्हारे मकानों में लगेंगे।
बाबा को तोल नहीं
सकते,
आगा
खा वही जो ईश्वरीय सेवा के संबंध में रहेंगे वो समीप संबंध में आएंगे। जो यहाँ पर सेवाधारी है, जो यहाँ सेवाधारी है वो वहाँ रॉयल फैमिली के अधिकारी होंगे। जो यहाँ हार्ड वर्क करेंगे वो वहाँ पर राजा करें, राजा ही करो, वो वहाँ पर सिंहासन पर बैठेंगे, और जो यहाँ आराम करेंगे वो वहाँ काम करेंगे। बाप के पास एक एक सेकंड का एक एक काम का हिसाब है, उसी मुरली की लास्ट, उसी वरदान का लास्ट लाइन।
बाप के मदद का श्रीमत पर जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे श्रीमत पर बाप के मददगार बनते हैं।
और
जो बाप की मदद के मददगार बनते हैं वही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं।
विश्व राज्य अधिकारी महावाक्य। और जब याद करने जाते हैं ना तब याद नहीं आता, यही ज्ञान है। बाकी जब मुरली सुनते तो ऐसा लगता है सब पता है, पर जब याद करने जाते हैं
अकेले में इतने नहीं,
अकेला नहीं होता है, पर अकेले का भी अपना महत्व है, संगठन का अपना महत्व है।
डेली डेली करें तो
हाँ,
डेली अपना पर्सनल,
अगर हम हफ्ते में एक बार करें तो इतना नहीं याद आएगा।
हाँ, ये जो जो हम एक हफ्ते का सारा कर रहे हैं ये डेली करो, यहाँ ना मुरली पढ़ो नहीं,
ये हम ऐसे ही करते हैं। जो हम सवेरे मुरली सुनते हैं ना
पढ़ो नहीं, वो
शाम को उसी को ये ऐसे
रिवाइज करो ऐसे, यही सबसे
अच्छा है। रखेंगे भूल जाएंगे, हाँ, देख लेंगे,
देख लो आखिरी में वो मुरली निकाल के फिर देख लो क्या क्या पॉइंट छूट गया है वो लास्ट, क्योंकि बुद्धि के जो है ना याद करने की कोशिश करनी, याद करेंगे ना जितना तो एक से एक कनेक्ट होगा, लिंक होते जाती है, वो सबसे बेस्ट मेथड है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ अगर रोज ही अव्यक्त वाणी चले सुबह और रोज ऐसा डिस्कशन हो तो अवस्था कैसी ऊपर चली जाएगी, मजा आ जाएगा ना। रोज अवस्थ्य वाणी, रोज एक मुरली अव्यक्त वाणी का चिंतन सारे दिन भर, और उसका शाम में है नहीं, वो पढ़ना एक अलग बात है,
पढ़ना अलग
होता है, पढ़ना सारे दिन भर चिंतन करना और बिना देखे फिर डिस्कशन करना,
रोज ही घी के
और शक्तिशाली होंगे, शक्तिशाली तो होंगे,
हजम करने के लिए
चाहिए ना, आएगी ना पावर। ये कब था और कोई पॉइंट बचिए बाबा के बारे में, माया के बारे में, भक्ति के बारे में? भक्त मैं भक्त बाशी बाबा भक्ति नहीं करते, ऐसे भी था एक दिन। और भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में, योग के बारे में, सेवा के बारे में, धारणा के बारे में,
कहेंगे नीति
नीति,
लेकिन
हाँ नीति नीति,
हाँ
नीति नॉट दिस नॉट दिस, ये वेदों का महावाक्य। अचानक के पेपर में बोला ना
शरीर बन जाते,
यही अभ्यास जो
है
वो है हद की पढ़ाई, ये है बेहद, ये उस पढ़ाई और इस पढ़ाई में दिन रात का अंतर है।
तो पढ़ाई से रात हो जाती है, दुनिया की पढ़ाई से रात हो जाती है, इस पढ़ाई से
दिन हो जाती है। ये अच्छे में मंडे का हमने उस दिन पॉइंट निकाले थे, 25 पॉइंट निकाले थे, उस पढ़ाई और इस पढ़ाई में क्या अंतर है। अभी उसको छोड़ दे, दूसरा पॉइंट उस पढ़ाई और इस पढ़ाई में क्या।
बाबा कोई पढ़ के टाइटल नहीं लेते, बाबा को टाइटल पहले से निकालते। इस पढ़ाई में हम मरते हैं, उस पढ़ाई में अभिमान होता है मनुष्य, नम्र बनाती है
आध्यात्मिक पढ़ाई। और
बाबा को अपना शरीर नहीं है तो माया को भी अपना शरीर
नहीं
है।
नहीं ये तो नहीं,
नहीं ये नहीं, माया तो है। कौन सी
माया?
माया भी प्रवेश करता है, बाप भी प्रवेश करता है, निराकार वाली बात की।
चलो पत्थर मारा तो निकला।
कमल आसन धारी ब्राह्मणों की निशानी है, श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है कमल। बाबा ने कहा कमल आसन अर्थात न्यारी स्थिति है वो, देवता जैसे ब्रह्मा बाबा इसी स्मृति में रहते थे, कमल आसन धारी।
सब बाप का प्रसाद है, मेरा पन आएगा महापाप है,
मेलापन। वो मेले करते ब्रह्मपुत्रा नदी को बीच में याद किया, वहाँ फिर मेले करते, वहाँ मेले होते, मेला पावन बनाने का है।
देर गुरु
की
है,
बारह गुरु की है, और फिर बाबा बोलते वो सब भक्ति मार्ग,
भक्ति मार्ग।
दो तीन मूर्तियों में किया, व्यापार करो,
व्यापार भगवान के साथ व्यापार है,
व्यापार करो, लौकिक वर्षा पारलौकिक वर्षा,
बाप एक्सचेंज करने की बात बोली है, तो लौकिक वर्षा को पारलौकिक वर्षे से एक्सचेंज करो। जिसने जो जो जिसने जो जो कर्म करे हैं किए हुए वो सब सब सामने आएगा अंत में,
ये भी वही याद रहेगा, कुछ याद नहीं।
विनाश के लिए भी कुछ था शायद, ठीक है तो रोके तो अगली बार की